दूस भानु जो हैं श्रीमती राधा रानी के पिताश्री हैं और वो इस गाँव में रहते थे और उनका यहाँ पे महल था जहाँ पे श्रीमती राधा रानी जो वो निवास करती हैं। ब्रह्मा जी ने कई वर्ष हजारों वर्षों तक तपस्या की भगवान की और फिर वो चाहते थे कि जब भगवान प्रकट हुए तो वरदान में ब्रह्मा जी ने मांगा कि मुझे ब्रज में स्थान दीजिए ताकि मेरे मैं चाहता हूँ कि आपके जो भक्त हैं गोपियाँ हैं उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़े तो मेरा अहंकार शुद्ध हो जाए। तो ब्रह्मा जी को अहंकार रहता है कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ इसलिए वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिसको ये अहंकार रहेगा मैं ये हूँ मैं वो हूँ कई प्रकार की उपाधियाँ जो धारण करता है उसको कभी भी भगवान प्राप्त नहीं होता। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम सारी उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो अहंकार जो है हमारा भगवान भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। अहंकार किस प्रकार का अहंकार मैं ये हूँ मैं वो हूँ तो इसलिए हम अहंकार भगवान के कीर्तन में नाच नहीं सकते क्योंकि अहंकार बचपन में अहंकार नहीं रहता है छोटे बच्चों में ज़्यादा अहंकार नहीं रहता इनोसेंस होता है। अब देखिए छोटे अभी कीर्तन हो गया छोटा बच्चा है तो तुरंत नाचना शुरू कर देगा लेकिन जब बड़े लोग सोचेंगे कहीं कोई देख रहा है क्या सोचेगा मेरे बारे में इमेज कॉन्शियस जिसको बोलते हैं ना इमेज कॉन्शियस मेरा इमेज खराब हो जाएगा तो ये अहंकार है इसको त्यागना चाहिए तभी आप शांति और सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो भगवान जो हैं वो ब्रह्मा जी जो हैं उनका अहंकार है तो इसलिए वो भगवान उनको स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मा जी चाहते हैं कि मैं आपका दास बनूं तो प्रार्थना की कि मैं कैसे आपका दास सेवक बन सकता हूँ शुद्ध दास। तो भगवान ने उनको तपस्या जब किया तो भगवान ने ठीक है आपको मैं ब्रज में पर्वत बनाता हूँ पहाड़। तो ब्रह्मा जी जो है यहाँ पे पर्वत के रूप में विराजमान है जिस पर आप बैठे हैं ये ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्म वैवत पुराण में इसका वर्णन है बरा पुराण में और ब्रह्मा जी जो हैं वो इस पे जब गोपियाँ घूमती हैं तो उनके चरणों की धूल ब्रह्मा जी के मस्तक पर पड़ती है तो काफ़ी ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। और ये जो स्थान है ये मानलीला है मानलीला मतलब कि भगवान का जो दो फीचर है ना भगवान जो है वो भगवान का मेल फीचर कृष्णा और भगवान का फीमेल फीचर श्रीमती राधा रानी। तो साधारण जैसे हमारे इस भौतिक जगत में मेल और फीमेल उस टाइप से नहीं है ये संबंध है ना इसको हम इसलिए इसको समझना काफ़ी कठिन है क्योंकि हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं है ना साधारण बॉय और बॉयज और गर्ल्स की जो रिलेशनशिप है उससे राधा कृष्ण के संबंधों की तुलना क्योंकि हमारे दिमाग में वही है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि अगर साधारण स्त्री पुरुष के बीच का अगर ये संबंध होता तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको नहीं सुनते है कि नहीं ब्रह्मचारी सन्यासी लोग क्यों भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं अगर ये ऑर्डिनरी सेक्स रिलेशन होता तो ये ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन लगता है ऑर्डिनरी बिल्कुल ऑर्डिनरी लगेगा लेकिन ये बहुत उच्च कोटि का आध्यात्मिक आनंद है जो कि वही समझ सकता है जो सेक्स डिजायर से पूरी तरह फ्री हो चुका है वो भगवान की लीलाओं को कंडीशन बताएगा कि भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं को कौन समझ सकता है तो बताया गया कंडीशन की जो सेक्स डिजायर से फ्री हो वही राधा कृष्ण की लीला को समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि राधा कृष्ण की लीला में सेक्स का कोई रिलेशन संबंध अब क्या है फिर वो आप सब नहीं समझ सकते अभी, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ डिजायर से फ्री होना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए अभी हम उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, अपराध होगा, है ना। तो भगवान जो है वो प्रकट हुए थे और उनकी आह्लादनी शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी है, परम भगवान की आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति को प्रकट करते हैं राधा रानी के रूप में अपने से। पहले भगवान एक थे, उससे दो हुए, एक थे उससे एक और रूप निकला, वह श्रीमती राधा रानी जो कि आह्लादनी शक्ति है। तीन शक्तियां भगवान की, संजनी शक्ति, संवेद शक्ति और आह्लादनी शक्ति। तो इसमें से आह्लादनी जो शक्ति है उसके अधिष्ठात्री हैं श्रीमती राधा रानी, और संवेद शक्ति संवेद संघ के अधिष्ठात्री भगवान श्री कृष्ण, और संजनी शक्ति के अधिष्ठात्री अधिष्ठाता भगवान बलराम। तो ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है जिसको कि आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो अभी जो है हम लोग को बस इतना ही समझना है कि भगवान जो है जब प्रकट हुए थे तो यहाँ पे अपनी दिव्य लीलाएँ किए थे, है ना, और उसको जो है जिनका हृदय जो है वो शुद्ध हो चुका है वो उसको समझ पाते हैं। तो ये स्थान जो है यहाँ पे मान लीला हुई थी। जैसे भगवान जो हैं वो बिल्कुल, उनके अंदर भी वही इच्छाएं हैं जो एक हमारे अंदर इच्छाएं हैं, क्योंकि हम सैंपल हैं उनके, है ना। हम क्या हैं? भगवान सैंपल हैं, छोटा एक सैंपल निकाल लिया भगवान से तो हो गया कुलदीप, छोटा इतना। जैसे समुद्र से एक बूंद निकाल लीजिए तो बूंद में भी क्या रहेगा, H2O, और समुद्र में क्या है, क्या है, H2O, है ना। तो समुद्र और बूंद में क्या अंतर है, कोई अंतर है कि नहीं है भी और नहीं भी है कि नहीं। अगर क्वालिटी रूप में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, इसमें भी H2O, उसमें भी H2O, लेकिन क्वांटिटेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत अंतर है, कोई तुलना ही नहीं है, है कि नहीं। बूंद से किसी की प्यास नहीं भरेगी, और किसी के ऊपर बूंद गिरा दीजिए तो कुछ होगा, अलग नहीं, समुद्र गिरा दीजिए तो समुद्र गिरा ही नहीं सकते आप, गिराने के लिए उठाना पड़ेगा। आसमान के अंतर है, तो इसलिए ये अंतर है हमारे जीवात्मा में और भगवान में, समझ रहे। हम सब क्या है, जीवात्मा, भगवान के ही अंश हैं, हमारी वांश जीव लोक जीव भूत सनातन, जो जीवात्मा है मेरा ही अंश है भगवान बता रहे, लेकिन भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं। कई मूर्ख दार्शनिक हैं जो बताते हैं कि हम भी भगवान हैं, अगर भगवान है तो हम सुसाइड क्यों कर रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। अगर हम सब भगवान है तो सुसाइड नहीं करना चाहिए ना, भगवान सुसाइड करते हैं तो बोलते हैं नहीं भगवान अभी भूल चुके हैं कि भगवान है, ये कैसे भगवान है जो भूल जाते हैं। भगवान बहुत ही बताते हैं कि सर्वस्य चाहमिति सन्निष्ठम मत स्मृति ज्ञानावपन, हम सब मुझसे स्मृति आती है तो भूल कैसे गए, जब उन्हीं से स्मृति आती तो वही भूल गए। तो ये बिल्कुल गलत समझ है कि भगवान, हम सब भगवान, ये तो साधारण व्यक्ति भी जानता है कि हम भगवान नहीं है ना, क्योंकि भगवान मतलब सबका कंट्रोलर, हम सबके कंट्रोलर नहीं है, है कि नहीं। अभी अगर हमें टॉयलेट लग जाए तो हमें भागना पड़ेगा, टॉयलेट भी कंट्रोल नहीं कर सकते, सबको क्या कंट्रोल करेंगे, टॉयलेट हमें कंट्रोल करता है, हम भगवान नहीं है, ये बात स्पष्ट होना चाहिए है? तो हम भगवान के सेवक हैं, है ना, भगवान जो है हमें हमारा विस्तार करते हैं, इसलिए हमारे गुण भगवान के तरीके से, इच्छाएं जो होती हैं वो जैसे भगवान के अंदर जो इच्छाएं उस टाइप की इच्छा हमारे अंदर भी है ना। तो भगवान जो है वो भी जैसे संबंध चाहते हैं, रिलेशनशिप, है ना, जैसे हम लोग क्या चाहते हैं, रिलेशंस, है ना। रिलेशंस में क्या होता है, आनंद आता है, है ना। अलग अलग प्रकार के रिलेशन, सिस्टर, ब्रदर, है ना, अलग अलग रस होता है ना। ब्रदर का भाव अलग होता है ब्रदर के प्रति, सिस्टर का भाव अलग होता है ब्रदर के प्रति, है कि नहीं है। और माता पिता पुत्र का बीच का जो संबंध है, है ना, या दोस्त मित्र के संबंध है, मित्र में अलग भाव होता है कि नहीं। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी अलग अलग प्रकार के संबंध बनाने की जो इच्छा है, उसी तरह से भगवान, इससे पता चलता है कि भगवान के अंदर भी क्या होगा, इसी टाइप की इच्छा होगी। लेकिन हमारे अंदर थोड़ी सी है, इतनी है, और भगवान के अंदर क्या कितना होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और पूर्ण शुद्ध होगा, है ना। तो भगवान भी इसीलिए इस संसार में प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं और बोलते हैं कि आप सब आइए। भगवान इस संसार में क्यों आते हैं, उनका एक कारण होता है कि भगवान जो देखते हैं कि हम सब बड़े दुखी हैं इस संसार में, उनसे अलग होकर भगवान चाहते हैं कि मैं इनका, इन सबको अपने धाम वापस ले चलूं। तो भगवान आते हैं और इस संसार में अपने धाम का आनंद प्रकाश करते हैं यहाँ पे, कि हमारे साथ आओगे तो इतना कितना आनंद आएगा देखो, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट करने आते हैं अपना, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है, है ना, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, है ना। तो बोलते हैं कि आओ देखो, ये यहाँ पे आते हैं, लीला करते हैं, बोलते हैं देखो मेरे शरण में जो आता है उसको कितना आनंद है, उसको कोई कुछ नहीं, कोई कमी नहीं होगी, किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार की अशांति नहीं है, है? सब दिखा के शास्त्र भी में लिख के अपनी लीलाओं को करते हैं और अपने ही लिखते भी हैं, व्यासदेव के रूप में फिर क्या करते हैं, लीलाओं को लिखते भी हैं, है ना, ताकि पढ़ सके हम लोग। नहीं तो किसने देखा है कि यशोदा ने कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखा, व्यासदेव तो नहीं था वहां पे, तो कैसे लिख दिया, क्योंकि व्यासदेव स्वयं भगवान है। तो बोल रहे हैं कि मैंने दिखाया था मुंह में ब्रह्मांड, यशोदा मैया को खुद लिख रहे हैं, है ना, व्यासदेव के रूप में, समझ रहे बात को। तो इस तरह से भगवान जो है खुद लिखते हैं और हमारे लिए अवेलेबल रखते हैं। नहीं तो आप क्या सोचते, इतने सारे लोग पागल हैं जो वृंदावन में सब कुछ त्याग कर घूम रहे हैं, हैं? और केवल आप ही, चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए आप बुद्धिमान हो गए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करा लिए, दिल्ली शहर में रहते हैं इसलिए आप बुद्धिमान हैं, और इतने बड़े बड़े आचार्य जो सब कुछ त्याग कर और भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं और आनंद के सागर में डूब रहे हैं, लिख रहे हैं कि मैं आनंद के सागर में डूब रहा हूँ, तो सब क्या पागल हैं, मूर्ख हैं, हैं? सदियों से जो हमारे आचार्य, इतने बुद्धिमान आचार्य लोग हैं, भक्ति करते थे, तो क्या वो सब मूर्ख थे, और 21वीं सदी में अचानक मनुष्य बुद्धिमान हो गया केवल इसलिए क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता है, और इसलिए बुद्धिमान होने के कारण सुसाइड कर रहा है, क्राइम कर रहा है, क्योंकि बुद्धिमान हो गया है मानव 21वीं सदी में, है? इसलिए समस्याएं बढ़ा रहा है ये बुद्धिमानी के लक्षण है, है? और जो आचार्य पागल थे वो शांति से रहते थे सुख में रहते थे, आनंद में रहते थे, और प्रेम का वितरण करते थे, क्योंकि वो पागल थे, और हम लोग बुद्धिमान हो गए हैं इसलिए हम लोग ईर्ष्या का वितरण कर रहे हैं, लस्ट का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि हम एडवांस हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए हैं। तो वैसे बुद्धिमानी कितने लोगों को चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, है? तो ये मूर्खता वाली बात है, है ना। तो ये जो शास्त्रों में जो भगवान ने बताया है, तो आते ही संसार में दिखाते हैं, ये वास्तविक घटना है 5000 वर्ष पहले, तो आप देखो हर चीज मौजूद है, भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाए की, उनका गांव, उनके भक्त, राधा रानी का गांव है, उनकी 8 सखियां हैं, 8 सखी का गांव है, नई पे चित्रा सखी का गाँव, चिकसौली ललिता सखी का गाँव, ऊंचा गाँव, सारी सखियों के गांव है, चंद्रावल रावल भी गांव है, हर स्थान है आज भी, है? कैसे है? ये सब कल्पना से बनाया गया है, नाप के बनाया गया कि यहाँ पे इनका गांव बना देते हैं, कि यहाँ गांव बना देते हैं, नहीं, सारे विलेज पैलेस हैं, हर लीला स्थलियां हैं। पहाड़ तो नहीं बना सकते ना डिजाइन करके। तो पहाड़ के ऊपर ब्रिशभानु महाराज का महल बनाते हैं, उस पहाड़ का नाम दे देते हैं और ब्रह्म, फिर उसके बाद ब्रह्म पुराण में लिख देंगे। नहीं होगा ना है? तो इतना ज्यादा थोड़े ना मतलब कॉपी पेस्ट होगा। तो इसलिए ये मूर्खता की बात है। तो भगवान जो है वो वास्तव में यहाँ पे लीला किए, यहाँ पे प्रकट हुए आज से 5000 वर्ष पहले, तो आप उसको फील कर सकते हो। जैसे काफी लोगों ने फील किया कल, आप लोग आए थे, कई लोग तो काफी पर मतलब खुश हुए थे हृदय से। जब से आप लोग आए हैं कई लोग एकदम आनंद के सागर में गोता लगा रहे हैं, है कि नहीं? अब वो क्या दिया मैंने, पैसा तो नहीं दिया है, क्या दिया हम आपको, बस दर्शन कराए स्थानों, इन स्थानों में इतनी शक्ति है कि यहाँ पे आने मात्र से आपका हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा, आपके हृदय में प्रेम जो है वो उमड़ने लगेगा, जिसमें इतना पावर है इस स्थानों की। क्योंकि इन स्थानों में शुद्ध परम शुद्ध भगवान रहते हैं और उनकी परम शुद्ध शुद्ध आत्माएं रहती हैं जो उनसे नित्य प्रेम करती हैं बिना किसी स्वार्थ के। और ऐसे स्थान पे आप आएंगे जहाँ पे कि निस्वार्थ प्रेम है, तो आपके हृदय में भी अपने आप वो प्रेम प्रकट होने लगेगा। तो इसलिए कल एक भक्त रो रहे थे और मुझसे पूछ रहे हैं प्रभु जी मैं रो क्यों रहा हूँ। तो यह स्पष्ट बात है कि आप जो हैं वो कोई वस्तु आपको बहुत प्रिय थी, प्रिय थी, और जो है वो आपकी आपको एक्सीडेंट हो गया, आपका यादाश्त खो गया मान लीजिए, है कि नहीं? और उसके बाद जो है बहुत दिनों तक आप शून्य में रहे, है ना? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, जीवन का लक्ष्य क्या है? और तभी जो है अचानक एक है ना, आपको घुमाते घुमाते व्यक्ति एक फेवरेट स्थान पे लेके आता है जहाँ पे कि जिस स्थान के बारे में आप जानते हैं, बहुत दिनों के बाद आप उस स्थान पे आए, वो आपका बहुत प्रिय स्थान है जहाँ पे आप अपने प्रियतम भगवान के साथ काफी घनिष्ठ संबंध रहा है आपका, तो वहाँ पे आते ही आपकी यादाश्त वापस आती, तो आप क्या करोगे? आपको लगता है ये जाना पहचाना लग रहा है, बहुत दिनों से इसी की तो तलाश थी मुझे, मैं इतने दिनों से दूर रहा इससे, है? तो आपको खुशी के आंसू आपके अंदर आएंगे, है ना? प्रेम के आंसू प्रकट होते हैं कि वो मिल गया जिसकी तलाश थी। अगर आप किसी व्यक्ति से जो आपको बहुत प्रिय है बहुत दिनों तक दूर रहते हैं और जब मिलते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखों से आंसू आएंगे, खुशी के आंसू, है ना? तो ये खुशी के आंसू हैं हृदय, क्योंकि आपको कोई दुख नहीं, आपको पिटाई तो नहीं किया ना मैंने। कल आप लोग कितने लोग पिटाई की मैंने, तो सर्टेनली ये दुख के आंसू नहीं थे, है कि नहीं? या प्रसाद लगता है कम खाया खिलाया, पूरा प्रसाद खाया था, पूरा प्रसाद खाया था, किन की आंखों में आंसू आ रहा था कल आपकी? प्रसाद खाया था पूरा, ऐसा तो नहीं आपने कम लगता है डाल दिया था, कम डाला था क्या? नहीं पूरा डाला था, ठीक है, तो प्रसाद भी कम नहीं था, रात में नहीं गाया बढ़िया से, इसका मतलब है कि दुख के आंसू नहीं थे, इसी से पता चलता है, है? क्योंकि कोई आपको कष्ट नहीं दिया गया है ना, तो इसका मतलब जो आंसू आ रहा था वो खुशी के आंसू थे और प्रेम के आंसू थे, इसको बोलते प्रेम आंसू, है ना? ये प्रेम आंसू, जब कोई व्यक्ति बहुत दूर है ना चला जाता है किसी व्यक्ति से, फिर वापस मिलता है कई साल वर्षों के बाद, तो उसको प्रेम आंसू आते हैं उसकी आंखों में, है ना? और जिसका हृदय जितना साफ होगा उसका उतना जल्दी आंसू आएगा, है ना? इसमें मतलब ये नहीं कि हम लोग रुलाएंगे आप लोगों को। नहीं, है ना? तो आजकल लोग रोते नहीं है, लेकिन एक बात देखिएगा, आजकल लोगों की आंखों में आंसू नहीं आते जल्दी, रोना बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है, जिसका हृदय पत्थर का है वो रो नहीं सकता। इसलिए बता रहे दिल्ली में कि अगर किसी का डेथ हो रहा है आजकल, तो तो प्रोफेशनल रोने वाले बुलाए जाते हैं। अभी बता रहे थे पहले, जापान में ऐसा है कि अगर किसी के घर में कोई मर गया तो परिवार वालों के आंखों में आंसू नहीं आते, है ना। तो रोना तो है ना, लेकिन वो तो करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तो क्या किया जाए फिर। तो वहाँ पे प्रोफेशनल रोने वाले हैं तो उनको बुलाया जाता है ना, इनविटेड, पैसा पे बुलाया जाए, ये 2000 रुपया आप लीजिए और आके 2 घंटे रो के जाइए। क्योंकि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, थोड़ा रोना चाहिए मृत्यु के दिन, है ना। तो ये पशु का समाज है, पशु भी अच्छे हैं क्योंकि रोते हैं, है ना। तो हमारा पत्थर का समाज हो गया, होता जा रहा है ना। तो मनुष्य का मतलब भावना है, भावनाओं को अगर हम मारेंगे तो हम पत्थर हो जाएंगे ना? तो डार्विन तो बोलता है कि पत्थर ही है कि नहीं। डार्विन बोलते हैं ना कि हम सब क्या हैं, केमिकल्स हैं। तो केमिकल्स में कोई रोने की बात ही नहीं है, केमिकल क्यों रोएगा। केमिकल रोएगा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब डार्विन का सिद्धांत गलत है ना, केमिकल रोता नहीं है। तो भावनाएं जिसके अंदर है वही रोएगा, पत्थर नहीं रोएगा। और मनुष्य भावनाओं से जाना जाता है। तो इसलिए हम सब जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भगवान का धाम इतना आकर्षक है, ये नेचुरल है। कदम के पेड़ हैं, ये जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं ये कदम का पेड़ है। ये पेड़ जो अभी सूखा हुआ लग रहा है क्योंकि अभी ये कृष्ण के विरह में है, इसलिए इसके देखिए कुछ पत्ते सूख गए हैं, कुछ अभी हरे हैं, क्योंकि अभी अभी हम कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, इसलिए कुछ पत्ते अभी अभी हरे हुए हैं ना? और वो भी कदम का पेड़ है ना। रात में चांदनी जब रात होती है ना, पूनम की रात, पूर्णिमा की रात, तो उस समय रात में चमकते हैं ये पेड़, है ना। अगर वास्तव में आपको भगवान की जो लीला है, और पूर्णिमा के दिन जो रास लीला होती है उस दिन, तो पूर्णिमा के दिन जब आप आएंगे ना तो यहाँ का माहौल ही अलग रहता है ना। यहाँ पे आएंगे आपको बड़ा ही अच्छा सुंदर दृश्य दिखेगा। ये जो वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष जो होते हैं वो पीले, हल्के पीले होते हैं, तो चांदनी की जब प्रकाश पड़ता है चंद्रमा का तो उसमें खिलते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है वातावरण। तो ये जो शास्त्रों में जो वर्णन है, आप मोर यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोग जाएंगे तेल कदम, वहाँ पे आपको मोर दिखेंगे, बहुत सारे मोर हैं यहाँ, और तोते हैं, जिन जिन पक्षियों का, पशुओं का, गाय है ना, जिनका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो क्या मोर पकड़ के लाके छोड़ दिया गया यहाँ पे, क्योंकि भागवत में लिखा था ताकि भागवतम से मैचिंग हो, है? या कदम का पेड़ लगाया गया हर जगह, या मौसम भी बना दिया गया ऐसा ही है, नहीं, ये नेचुरल है यहाँ पे, है ना। तो मूर्ख लोग नहीं इसको समझ पाएंगे, जिसके हृदय में श्रद्धा है वही भगवान के बारे में समझ सकता है, आदर श्रद्धा। इसलिए भक्ति श्रद्धा से प्रारंभ होती है। तो जो सुबह हमारा जो सुबह का जो टॉपिक था वो था वाई वी डू व्हाट वी डू। जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि हम सब जो भी करते हैं क्यों करते हैं, आपके मन संका कई प्रकार के क्वेश्चंस उठते होंगे ना। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोग जब आए तो आप लोगों को जो है हम लोगों ने सुबह सुबह 3:30 बजे उठा दिया। आप में से कई लोग सोच, ये क्यों करते, सुबह क्यों उठना, आराम से उठेंगे, भक्ति आराम से करेंगे, ठीक है। नहीं, सुबह 3:30 बजे ही क्यों उठाया जाएगा, है ना, बाद में क्यों नहीं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपको तो एक दिन उठाया, लेकिन हम लोग रोज उठते हैं, है ना। और हम लोग, मैं तो ठीक है, चलो मेरे तो और कोई काम नहीं है है ना, लेकिन ये स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज के, ये भी रोज उठते हैं, है ना, रोज 3:30 बजे उठते हैं, है ना। और शिवांशु प्रभु सबसे पहले उठते हैं, है ना। शिवांशु प्रभु जानते हैं आप, शिवांशु प्रभु ये सबसे पहले उठ जाते हैं पेश में, और सबको उठाते हैं। आप चाहेंगे तो आपको भी उठा सकते हैं, है ना। तो शिवांशु प्रभु बताएंगे कि आप इतना जल्दी क्यों उठते हैं आप, 3:30 बजे क्यों उठते हैं?
क्योंकि मॉर्निंग का टाइम मोड ऑफ गुडनेस का होता है, तो उस टाइम पे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं वो मोस्ट बेनिफिशियल होती है हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए।
वेरी गुड, तो इसका उत्तर आपको दूंगा। इन्होंने बताया कि शास्त्र में बताया कि मुहूर्त होते हैं, तो सुबह का जो समय होता है 4:10 से लेके 2 घंटे का जो समय होता है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, है ना। उस समय जितने राक्षस होते हैं वो सो रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत शांति रहती है, है ना। और उस समय आप बहुत ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान के लिए बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि जितने जो है जितने पापी लोग हैं वो उस समय आराम कर रहे होते हैं, है ना। पापियों को रात में नींद नहीं आती है और 3:30 बजे के लोगों की नींद आना शुरू होता है। आपको 3:30 बजे सोएंगे और तब हमारे डिवोटी जो उठते हैं उस समय, भक्त जो उठते हैं 3:30 बजे, है ना। और बताया जाता है कि और फिर जो है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की भक्ति करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। उस समय देवता लोग भी भ्रमण करते हैं उस पीरियड में, पूरी पृथ्वी में देखते हैं कि कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और इसलिए बताया गया कि अगर आप 4:30 बजे के बाद या 4:30 बजे के बाद अगर आप सोएंगे तो आपको जो है गलत सपने आएंगे। ये आप प्रमाण कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि 5 बजे जितने आपको गलत सपने जो आएंगे रात में वो 4:30 बजे के 5 बजे के बाद आने शुरू होते हैं। क्यों? और 4:30 बजे के बाद जो भी व्यक्ति सोता है वो केवल सपने देखता है, सोता नहीं है वो। क्योंकि बताते हैं कि साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुका है ना। एक मेरे के पास किताब है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है स्लीपिंग के ऊपर, एक किताब लिखा गया आर्ट ऑफ ए स्मार्ट स्लीपिंग, मेरे पास है वो किताब। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन भी, नहीं तो आपको दिखा सकते हैं स्मार्ट स्लीप, कैसे स्मार्टली सोइए। कम सो के ज्यादा फायदा है ना, कम सोने से ज्यादा फ्रेशनेस आएगी ना, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्लीप। तो उसमें बताया गया है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, तो उसमें बताया कि 9:30 बजे रात से लेके और 4:30 बजे रात तक जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है सोने के लिए। हमारा बॉडी कैसा डिजाइन किया गया है ना, तो उस पीरियड में अगर हम सोते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा हमारे बॉडी को होगा, ऐसा बताया गया है ना। साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया क्यों उठते हैं हम लोग सुबह, व्हाई वी डू व्हाट वी डू, हैं। और इसके अलावा एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी आप लोग सुबह सुबह ही मंगल आरती क्यों करते हैं, मंगल आरती रात में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लोग 9 बजे रात में करें ना तो बहुत लड़के आ सकते हैं मंगल आरती में। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आप लोग जितनी शादियां और पार्टियां करते हैं रात में क्यों करते हैं, 4:30 बजे सुबह होना चाहिए सारी शादी शादी पार्टी। पार्टियां रात में क्यों होती है, सुबह 4:30 बजे किया जाए पार्टी कैसा रहेगा। रॉक डांस सुबह 4:30 बजे। तो हर कार्य का एक समय होता है ना। तो बताया जाता है कि सुबह का जो आवर होता है पहला 6 घंटे है ना, 2:30 बजे से लेकर लगभग 8:30 बजे तक जो है ये पीरियड जो होता है वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है, सतोगुण में। और 8:30 बजे के बाद जो है वो पैशन मतलब रजोगुण शुरू होता है, जो कि कब तक चलता है, शाम के 6:30 बजे तक। और उसके बाद जो है फिर 6 बजे तक लगभग 5:30, फिर 1-2 घंटे का सतोगुण आता है संध्या जिसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर से तमोगुण का 7:30 बजे के बाद तमोगुण का मतलब भूत प्रेतों का टाइम आता है, भूत प्रेत असुर, इसलिए निशाचर बोलते हैं। निशाचर मतलब निशा मतलब रात्रि, अक्षर मतलब चलते हैं, जो रात्रि में चलते हैं जगते हैं उनको बोलते हैं निशाचर, है ना। आप सब समझ सकते हैं। निशाचर या निशिचर जो भी है, तो असुर प्रवृत्ति के लोग जो है वो रात में जगते हैं। तो बेस्ट टाइम होता है भक्ति के लिए या किसी भी काम के लिए, है ना, अच्छे कार्य के लिए, और रात नहीं। चोर सारे दिन में बहुत कम एक्टिव होते हैं, या सुबह चोर एक्टिव नहीं होते, लेकिन रात में 7 बजे के बाद उनका दिमाग काफी एक्टिव हो जाता है ना। चोर उचक्के भूत प्रेत है ना जितने होते हैं ना, सब पैशन जो है पागलपन सवार हो जाता है रात में लोगों के ऊपर, है ना। तो जितनी दुष्ट आत्माएं होती हैं वो सब रात में एक्टिव हो जाती हैं, है ना। और इसलिए उस रात में आप जप करके देखिए, आपका मन नहीं लगेगा कभी भी, क्योंकि सारी दुष्ट आत्माएं जगी हुई है, सोच रही है। तो इथर में जो है उनके वाइब्रेशन फैला हुआ है ना, इसलिए जो अच्छी आत्माएं होती है जल्दी सो जाती है ना, क्योंकि जगेगी तो क्या होगा, वो भी सोचने लगेंगी गलत, ऐसा होता है, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसा होता है ना, वाइब्रेशन का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आप जो है अभी यहाँ से उठ जाइए, अभी जाइए दिल्ली, है ना, दिल्ली में जो है आप जो है सरोज नगर मार्केट जाइए, ठीक है, तो वहां पे वाइब्रेशन बिल्कुल अलग है। आप ना चाहते हो कि कुछ सामान खरीदने का मन करेगा है कि नहीं और जब यहाँ पे अगर आप वृंदावन आ पाए हैं तो ना चाहते हुए भी सामान फेंकने का मन करेगा। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कुटिया बना लूं। संन्यास का दिन लगता है अब आ गया है। तो ये किसका अंतर है, वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है कि नहीं, हमारी चेतना पे वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही आप दिल्ली जाएंगे, आप एक दो भूत प्रेत से मिलेंगे आप और वो आपको बताएंगे कि देखो मैं सोच रहा हूँ अभी, है ना, यहाँ से 10,000 कमाऊंगा, वहां से 20,000 कमाऊंगा, वहां से 50,000 कमाऊंगा, वहां से 1,00,000 कमाऊंगा, सब मिला दूंगा, मिला के और एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, उस पर बैठ कर जो है गोवा जाऊंगा, खंडाला जाऊंगा गर्लफ्रेंड के साथ, ये होगा, बीच में नहाऊंगा, ये करूंगा। तो आप तुरंत सोचोगे अरे यार मैं तो कुछ गलत सोच रहा था, मुझे चेंज करना चाहिए अपना, बड़ा प्रभु जी ने लगता है कुछ जादू कर दिया था, पता नहीं क्या हो गया था मेरे ऊपर उस समय, अब मैं नॉर्मल हो रहा हूँ तुम्हारे सामने आके, अब मुझे समझ में आ रहा है ना, अब नहीं जाऊंगा वृंदावन आगे से। तो फिर से आपको जो है ना वहीं पे आ जाएंगे जहाँ बहुत प्रभाव होता है वातावरण का, संघ का बहुत प्रभाव पड़ता है। कल बता रहा था मैं आप लोगों को, पावर ऑफ एसोसिएशन बहुत पावरफुल होता है ना? जैसे आप अपने हॉस्टल में जाइए और आप माला लेके जप की, जैसे ही कोई दोस्त आता है क्या करते हैं क्या है हाथ में क्या है, नहीं नहीं बस ऐसे ही थोड़ा खुजला रहा बताइए क्या बात है। जैसे ही जाएगा बाहर दरवाजा बंद फिर जैसे खटखटाएगा फिर से अंदर, हाँ बोलिए क्या बात है, तो माला करने में डर लगता है कि नहीं, कोई आके देख लेगा क्या बोलेगा। और अगर आप यहाँ पे आए हैं और अगर आप माला लेके नहीं आए तो आपको माला कहाँ है, वो प्रभु जी माला छूट गया है सॉरी ना, ये लीजिए माला लीजिए, जब सब जब कर रहे हैं तो आपको नहीं चाहते भी आप जब करेंगे है कि नहीं। तो ये देखिए पावर ऑफ एसोसिएशन कितना पावरफुल है। भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है भक्तों के संग में, लेकिन अगर आप भक्तों से दूर जाएंगे, वातावरण वैसा नहीं रहेगा, तो भक्ति करना काफी कठिन हो जाएगा। तो जो सुबह का समय है वो बहुत सुंदर होता है, बहुत बनाया ही गया है इसलिए ताकि हम भक्ति करें। और सुबह के समय इसलिए जो भक्त होते हैं वो उठ जाते हैं, है ना, उदिल भागे द्विजमनी गौरा मनी जागे भक्त समूह लैया साथे गेला नगर ब्राजे। तो सुबह का जो समय होता है वो भक्ति के लिए होता है, निर्णय बजाने के लिए नहीं। सुबह का समय जो है वो भजन, माला कीजिए, आरती कीजिए भगवान का, है ना, भगवान का। तो ये सबसे पहला कि हम उठते क्यों है बताया आपको, क्लियर हो गया क्यों उठते हैं सुबह। तो आप सबको भी प्रयास करना चाहिए, अगर आप गंभीर होना चाहते हैं तो सुबह उठने का प्रयास कीजिए। लेकिन सुबह उठने के लिए आपको आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि सुबह उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जल्दी सोना बहुत कठिन है, क्यों? जिसका नेचर भूत प्रेत का असुर का हो तो वो जल्दी नहीं सो पाएगा। उसको प्रभु जी कई लोग आते, प्रभु जी मुझे को 11 बजे नींद नहीं आती है रात में, कम से कम 1 बजे जब आते तो थोड़ा सा लगता है। क्यों? क्यों? क्योंकि नींद आती ही नहीं है, थकावट होता में नींद आएगी, तो 11 बजे नींद नहीं आएगी उनको, 10 बजे नींद नहीं आएगी। क्यों? तरोताजा लगेगा, बिल्कुल फ्रेश, तरोताजा एकदम फ्रेश हूँ, अभी तो मैं फ्रेश हूँ, अभी तो चलेगा 2-3 घंटे, ऐसा मन बोलता है, है? और किसी कारण अगर मान लीजिए सुला दिया जाए उनको, अगर कैंप में आए हैं तो 10 बजे सोना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर मान लीजिए सुला दिया जाए जबरदस्ती तो बड़े गुस्से में हो जाए, 10 बजे सुला दिया, क्या ये कोई टाइम है सोने? अभी तो टाइम हुआ है घूमने का, अभी तो मैं थका ही नहीं हूँ बिल्कुल। आज सुबह जब 3:30 बजे उठाया जाए तो पूरा बदन टूट रहा है, प्रभु जी बहुत दर्द हो रहा है, अभी तो बहुत थक गया हूँ, अभी थकावट पूरी नहीं हुई है, मतलब कि 5 घंटे सोने के बाद थकावट बढ़ गई। मतलब सोने से पहले 11 बजे तरोताजा थे, सोए किस लिए? ताकि और ज्यादा तरोताजा हो जाए। अब 5 घंटे सोने के बाद क्या हो गए? थकावट बढ़ गया है, ये देखिए। तो कहने का अर्थ है कि जब सोने का टाइम है तो मन बोलेगा कि अभी तो ये थका हूं नहीं, मैं नहीं थका हूं, और जब उठने का टाइम आएगा तो बोलेगा अभी मैं बहुत थका हूं। मतलब मन का काम है बिल्कुल उल्टा करेगा आपके साथ, बिल्कुल उल्टा करता है। क्योंकि अगर आप रात में नहीं थके थे तो 5 घंटे सोने के बाद कैसे थके? समझ में आ रहा? 5 घंटे सोने के बाद व्यक्ति को फ्रेश होना चाहिए ना, और ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त इज बेस्ट टाइम फॉर स्लीपिंग। पूरा दिन सोया मजा नहीं आया है, ब्रह्म मुहूर्त में सोया बड़ा आनंद आया। अब ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही बीतता है मन बोलता हाँ अब ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, आउट, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कि मन का काम है आपको सुबह सुधना है, लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं आध्यात्मिक जनों को सुबह उठना चाहिए, जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं अपने मन और इंद्रियों पे, उनको सुबह उठना चाहिए 3:30 बजे, 3:30-4 मैक्सिमम उठ जाना चाहिए। तो इसलिए आप सब भी चाहे तो सुबह उठ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और जिसका जो भी सुबह उठेगा उसको चेहरे को देख के बता सकता हूँ कौन सुबह उठता है कौन नहीं उठता है, क्योंकि जो सुबह उठेगा उसका चेहरा चमकता रहता है, ग्लो रहता है उसके फेस पे, चेहरा एक उस पर शाइनिंग रहेगा जो सुबह उठता है। आप अपना चेहरा शाइनिंग कराना चाहते हैं बिना किसी कॉस्मेटिक सर्जरी के, प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराने की जरूरत है, बस आपको एक काम करना पड़े, सुबह उठिए रोज, देखिए आपका चेहरा ऊपर लाइट आ जाएगा, प्रकाश बहुत नेचुरल है, ये शाइनिंग आ जाएगा, आपके मसल्स जो है बिल्कुल चमकने लगेंगे, रिलैक्स हो जाएगा। तो इसलिए सुबह उठना, हम लोग सुबह उठते हैं। वाई वी डू गेट इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग, बिकॉज इट इज गुड फॉर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, क्लियर। उसके बाद उठने के बाद क्या करते हैं प्रभु जी? उठने के बाद कुछ खाने के लिए होना चाहिए तो, तो सबसे पहले मुंह धोते हैं कि नहीं? जरूरी है, क्योंकि गंदगी रहती है ना मुंह में, मुंह में गंदगी हो जाती है, रात भर चलाते नहीं है कि नहीं? और जो जो खाना खाए रहते वो फंसा रहता है तो सड़ जाता है, बदबू आती है ना। आइडियल तो रहता है सोने से पहले एक बार ब्रश किया जाए, है ना, बेस्ट रहता है, है तो सारा साफ हो जाएगा, तो रात में सड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर नहीं किया रात में तो सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करना, फिर उसके बाद स्नान करना। क्यों? क्योंकि शरीर के कई गंदगी प्रकट जमा हो जाती है अंगों में, अलग अलग जगहों पे, है ना। जब हम सोते हैं तो कई प्रकार के सेक्रेशंस होते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, गंदगी निकलती है शरीर में, उसको साफ करना है, क्लीन, ना बॉडी को पहले क्लीन करना है, है ना, क्लियरिंग के लिए जाना चाहिए, उसके बाद जो है फिर स्नान करना। तो मन शुद्ध हो गया, शरीर शुद्ध हो गया, उसके बाद फिर मन को शुद्ध करना है। तो मन को शुद्ध कैसे करते हैं? आरती करके, है ना, भगवान की आरती करते हैं, क्योंकि मन रात भर सोया है तो गंदे गंदे सपने देखा मन, है ना, मन को कोई कंट्रोल नहीं रहता जब हम सो रहे हैं, तो जहाँ मन चाहता है वहाँ जाता है और गलत गलत सपने देखता है, गलत गलत कार्य करता है रात में। तो इसलिए मन को शुद्ध करना है, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? भगवान की आरती करते हैं। जैसे सुबह सुबह जो है हम, आपने आज आज सब आप लोग आए थे आरती में, कैसा लगा मंगल आरती? बहुत आनंद आया। तो भगवान की जो आरती होती है उससे को देखते हैं, भगवान का दर्शन खुलता है, है ना। और आरती होती है उसमें गीत गाते हैं, है ना, संसार दावा ललोक प्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? गुरुदेव को वंदना करते हैं। क्यों? भगवान की क्यों नहीं? क्योंकि गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे क्या किया, भगवान के बारे में बताया, नहीं तो मैं अज्ञानता में रहता, अंधकार में रहता। तो अंधकार से प्रकाश की तरफ कौन लाया? गुरुदेव। इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम गुरुदेव को कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से मैं भगवान के आज दर्शन कर पा रहा हूँ। तो ये भाव होता है, है ना। तो उसको बोलते हैं गुरुवाष्टक, आठ प्रेयर से आठ श्लोक है उसमें, आप लोग देख सकते हैं, उसका अर्थ पढ़ सकते हैं चाहे तो। और साथ ही साथ आरती होती है। तो आरती क्या होती है? सबसे पहले क्या करते हैं आरती में? जैसे ही दर्शन खुलता है तो क्या होता है? आप लोग मत बोलो, आप लोगों को पता है, इन लोग संघ बजता है, श्योर है? तो जोर से संघ बजता है, मतलब कि संघ का मतलब साउंड। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार टोटल पूरा ब्रह्मांड जो है वो आठ एलिमेंट से बना हुआ है, एट एलिमेंट्स, है ना, अर्थ वाटर फायर एयर एंड इथर, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसके अलावा ये पांच हो गए, पांच तत्व। इसके अलावा तीन और हैं, मन बुद्धि और अहंकार। टोटल कितना हो गए? आठ। भगवद गीता के सातवें अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं। तो ये जो आठ एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग यूज करते हैं पूरे दिन भर, है कि नहीं? पृथ्वी का भी यूज करते हैं, करते हैं हम लोग, है ना, जल का भी यूज करते हैं। तो इससे पहले कि हम यूज करें, उससे पहले हम इसको भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, फिर हम प्रसाद के रूप में लेते हैं। जैसे कि कोई पिताजी हैं मान लीजिए, और वो जंगल तो नहीं, मार्केट से आपके लिए मान लीजिए गुलाब जामुन लेके आए, आप बैठे हैं, हैं, और गुलाब जामुन लेके आए और आप जो है वो आपको बोले बेटा खा लो, तुम्हारे लिए मैंने गुलाब जामुन लेके आया हूँ, खाओ, दो बेटे हैं, 12 गुलाब जामुन है। तो एक जो बेटा जो है वो क्या करता है, फटाक से उसमें से 11 निकाल लेता है, 11 निकाल के साइड में चल के चला जाता है उधर कोने में, अपना फिनिश करके आता है, बोलता है वो भी एक तुम, वो तुम अकेले खा जाओगे, एक एक गुलाब जामुन थोड़ा मुझे और दो, मेरा पेट नहीं भरा। दूसरा जो बेटा है वो क्या कहते हैं, एक गुलाब जामुन जो भी मिला उसको, बच गया जो भी, वो लेके जाता है पिताजी के पास, बोलता है पापा पहले आप खाइए, पहले आप खाइए, है ना। तो पापा क्या करेंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, हैं, क्या बोलेंगे पापा, नहीं बेटा तेरे लिए ही लाया, खा ले, है कि नहीं। लेकिन पापा दोनों बेटों में किससे ज्यादा खुश होंगे, हैं? हाँ, जो पापा को पहले ऑफर कर रहा है, है कि नहीं। क्यों खुश होंगे, खाया तो नहीं, फिर खुश क्यों होंगे, हैं? हाँ, प्रेम करता है ये बेटा, ये मानता है, स्वीकार करता है कि मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, मैंने लाया गुलाब जामुन, इसको स्वीकार किया बेटे ने, मेरे पापा मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके उनका भी केयर करना। अगर आपका कोई केयर कर रहा है तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, तो उसको लात मारना है। मान लीजिए मैं आपको कपड़ा दिया, खाने का दिया, रहने का दिया, सब कुछ व्यवस्था किया है, आपके लिए घर बना दिया, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद एक दिन आपसे मिलने आया, आप किसी ने बताया आके आपको, अब बताया कि उन्होंने किया था, अब बोले किसने किया था, आई डोंट थिंक, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मुझे कैसा लगेगा। पहले तो आप रो रहे थे, भगवान तू कहाँ है, मेरे को इतना दुख क्यों दिया तूने, तेरे होते हुए मैं ऐसा दुखी क्यों हूँ, तू बहुत क्रूर है, नहीं देते हैं तो गाली देते हैं भगवान को, दे देते तो बोलते कहाँ है भगवान, कौन भगवान, मैं ही भगवान हूँ, मैं अपना किस्मत खुद बनाता हूँ, और भगवान दे नहीं देते हैं तो किस्मत नहीं बनाए, भगवान बनाते हैं, फेल हो गए तो किस्मत कौन बनाया, भगवान को कह दे तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, उसको क्यों नहीं फेल किया, मुझे ही क्यों फेल किया। अगर पास कर देते हैं तो बोलते हैं कि कौन भगवान, कहाँ का भगवान, मैं ही भगवान हूँ, मैंने पास किया, मैंने एग्जाम लिखा, मैंने किताब पढ़ा, है? तो इसको बोलते हैं कि कृतघ्न, कृतघ्न इसको बोलते हैं, जो सब कुछ इस्तेमाल करता है फिर बोलता है कि मैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। तो नेचुरल है कि पिताजी दूसरे बेटे से जिसने उनको ऑफर किया उसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, खाएंगे नहीं बोले तेरे लिए, फिर भी क्या करेंगे, बड़े खुश से होंगे, अगली बार गुलाब जामुन लगे तो खुश होंगे, है ना, कि इसके लिए चलो ठीक है, ये अच्छा बच्चा है, है ना, है कि नहीं। तो उसी तरह से ये जो 8 एलिमेंट्स हैं ये गुलाब जामुन की तरह है हमारे लिए, जो 8 एलिमेंट्स बताया है ना, आपका शरीर भी किससे बना है, 8 एलिमेंट्स से बना है, इस संसार की हर वस्तु ये जो 8 एलिमेंट्स आपको बताया उससे बनी हुई है, है ना। ये जितने पेड़ पौधे सब किससे बने हैं, पृथ्वी से, हैं? आप हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो मूली खा रहे थे, तो मूली किससे बना है, पृथ्वी से बना है कि नहीं। तो मूली खा लिया भगवान को याद ही नहीं किया, हैं? तो पृथ्वी भगवान ने दिया है ना, क्या आपने बनाया है, या वैज्ञानिक ने बनाया पृथ्वी, किसने बनाया, भगवान ने बनाया। तो इसलिए जब भी हम कोई चीज को यूज करते हैं उससे पहले हम याद करते हैं भगवान को, इसलिए सुबह सुबह इसे यूज करें या ना करें, पहले इतना याद, दिन भर याद करते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए सुबह सुबह सब ऑफर कर देते एक ही बार, आधे घंटे के अंदर, है ना, है ना, आधे घंटे गलती से भूल भी गया तो याद रखिएगा सुबह की कर दिया था, है ना, भगवान याद है, चलो सुबह किया था, चलो कोई बात नहीं, अभी यूज करो। इसलिए सबसे पहले साउंड है ना, इथर है ना, इथर को इस्तेमाल करते हैं, भगवान की ऑफर करते हैं, इथर को साउंड, साउंड के रूप में ऑफर करते हैं, कैसे, शंख बजाकर, तो साउंड मतलब साउंड को ऑफर कर दिया भगवान को, अब आगे बोल सकता हूँ मैं भी। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सबसे पहले अगरबत्ती, अगरबत्ती जो है उसमें गंध है, क्या है गंध, तो गंध जो है वो पृथ्वी तत्व है, क्या है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से गंध आती है, तो इसलिए जब अगरबत्ती चढ़ाए तो मतलब पृथ्वी को तत्व को हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद क्या ऑफर करते हैं, लैंप, तो लैंप से कौन सा तत्व ऑफर करते हैं, फायर, फायर को ऑफर करते हैं, है ना। उसके बाद, उसके बाद क्या था, वाटर, अर्घ्य, वो जो छोटा सा कॉन्च था ना शंख, उसमें ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना शंख, तो उसमें क्या होता है, शंख के अंदर पानी रहता है, मतलब भगवान को अभिषेक कराते हैं, है ना, तो पानी को भी ऑफर किया। उसके बाद वस्त्र, कपड़ा, पानी से नहलाने के बाद तो पोछेंगे भी ना, तो कपड़ा, तो क्लॉथ, है ना, तो क्लॉथ, क्लॉथ हुआ। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या था, फ्लावर, फूल, फूल ऑफर करते हैं। फ्लावर क्या है, वही पृथ्वी तत्व है, उसमें भी गंध होता है। उसके बाद चामर, उसे क्या है, हवा, है ना, हवा, तो इस तरह से। और फिर फैन, लास्ट में फैन करते हैं पीकॉक फेदर से, है ना, तो वही हवा है। उसके बाद क्या करते हैं, मंत्र बोलते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं अगर कुछ गलती हुआ तो, ऐसे खड़ा होकर, है ना, तो। और ये सब करते हुए हम हमारा जो भगवान के चेहरे पे ध्यान लगाते हैं, जब आरती कर रहा होता है व्यक्ति, तो ध्यान लगाने के बोलते हैं मन को जो है क्या कर रहे हैं, भगवान के ऑफर कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद मंत्र भी पढ़ते रहते हैं, है ना, मंत्र पढ़ते हैं, ओम ये, ओम ये। तो वो मंत्र जो है उसको बुद्धि, है ना, इंटेलिजेंस ऑफर कर रहे हैं भगवान, है ना, तो सोच भी रहे हैं भगवान के बारे में, ना? और उसके बाद प्रणाम करते हैं दंडवत, सब फटाक से सब गिर गए एक साथ। ये क्या रोज गिरने की क्या जरूरत है। अभी अभी तो सब खड़े थे, अचानक सब सो गए एक ही बार में। कई लोग सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये कोई आ गया लगता है आतंकवादी। नहीं, तो सोने का मतलब अपने अहंकार को क्या किया, अहंकार तत्व जो है ना, आठवां तत्व अहंकार, तो उसको हमने भगवान को समर्पित किया कि हम आपके शरणागत होते हैं, है ना। तो ये आठ एलिमेंट क्या हो गया, ऑफर हो गया, है ना। और ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन आप लोग वो कूद कूद के नाचते क्यों हैं, ये समझ नहीं आए, भगवान ये क्या जरूरी है, भगवान को मन में करते हैं, वो भी जोर जोर से गा रहे हैं, जोर से गाने की क्या जरूरत है, और गा भी रहे तो भी कूदने की क्या जरूरत है, ये नहीं नाचने की क्या जरूरत है, प्रश्न उठता है ना। कई लोग सोच रहे होंगे अपने मन में, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग पागल तो नहीं हुए, खुद तो है ही, हम ही बनाएंगे। तो ये नाचने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है नाचने की। तो आप देखते हैं, आपके जब दोस्त की शादी होती है तो क्या करते हैं आप लोग, आज मेरे यार की शादी है, हैप्पीनेस। तो आप हैप्पीनेस में क्या करते हैं, कई लोग तो नाचते हैं और देखते रहते हैं, कोई देख रहा है। मैं ज्यादातर मैं यही देखता हूँ, अगर किसी घर में शादी नाचने वाले, यही देखता है कि कोई देख रहा है कि नहीं। नहीं देखा तो फायदा क्या? मतलब दिखाना है कि एक बार नाचा था आपकी शादी में, मेरे भी शादी में। और व्यक्ति नाचता इसीलिए कि मतलब क्योंकि आप नाचे थे इसलिए नाच रहा हूँ आपकी शादी में, अन्यथा नाचने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को फीलिंग नहीं हो रहा है नाचने का, है ना। और एक बार देख लिया उन्होंने कि नाच लिया, बस हो गया आप क्या, ताकि बोले ना कि आप मेरी शादी में नाचे नहीं, है ना। तो इसलिए नाचते हैं, है ना। ये नहीं कि बड़ा प्रेम होता है, प्रेम भी होता है कई लोगों को, लेकिन तो, लेकिन वास्तव कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह कि मैं आपकी शादी में अत्यंत प्रसन्न हूँ इसलिए नाच रहा हूँ, मतलब दूसरों के दोस्त की खुशी से मैं बहुत खुश हूँ। तो उसी तरह से जब भगवान की आरती होती है, भगवान का गुणगान होता है, तो उनके भक्त जो उनसे प्रेम करते हैं वो क्या करते हैं? नाचते हैं, है ना। और नाचना जो है वो किस चीज का सूचक है? खुशी का सूचक है। आपने देखा किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई, वो सब नाच रहे हैं। देखा है? बताइए, नहीं देखा है? कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं, कि किस घर में मृत्यु हो गई और सब नाच रहे, कभी ऐसा नहीं होता है। नाचते कब है लोग? जब खुशी का माहौल हो। तो लोग बोलते आप लोग नाच क्यों रहे हैं, तो क्या कर रहे, रोए? क्या चाहते हो आप? रो रहे हो तो क्या चाहते हो? सब लोग रोए हैं। तो जो ईर्ष्या करता है भगवान से, जो भगवान से द्वेष करता है, वो नाचेगा नहीं। वो सोचेगा ये लोग उनकी तरफ देख के क्यों नाच रहे, मेरी तरफ देख के नाचे तो ठीक है, ठीक है, हैं? मेरे गुणगान करके नाचे तो बढ़िया है। ये क्या है, ये कृष्णा का क्यों कर रहे हैं ये लोग? मतलब उसको ईर्ष्या है भगवान से, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान से क्या है? द्वेष है, इसलिए नाचता नहीं है। इमेज कॉन्सियस है, इतने लोग इनके लिए नाच रहे हैं, मैं तो भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मेरे लिए तो कोई नहीं नाचता। तो नाचने का अर्थ है हम भगवान के दर्शन करके अत्यंत खुश हैं और भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, मैं जब उनकी प्रसन्नता के लिए नाचते हैं और भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, देखते हैं कि मेरी संतान मेरे को देख के खुश है ना। तो ये भाव है नाचते समय। और गाते ही क्यों हैं? वही गाना भी भगवान का गुणगान करते हुए नाचेंगे, है ना। तो इस तरह से मंगल आरती हो गया, उसके बाद तुलसी आरती करते हैं, तुलसी महारानी। ये बीच में एक पौधा आप लोग रख के क्यों उसको घूमते रहते हैं? इसे क्या है कि बीच में एक पौधा एक रख दिया, पौधे को घूमने की क्या जरूरत है? डॉक्टर इंजीनियर बन के यही सीखा? क्या करा रहे हैं आप लोग? हम इंजीनियर हैं, आप क्या करा रहे हैं? आपने प्रभु जी को घुमा रहे हैं आप पौधे के अगले टाइम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपको। उसमें पानी क्यों डालना है? इसे पानी वो भी 3 बूंदी ऐसे डालना है? डालने तो एक बार पूरा डाल दो, वो तो एक आदमी भी डाल सकता है, हम सब इतने लोग क्यों डाल रहे हैं? इतने लोगों का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? लाइन है कि नहीं, प्रश्न उठता है ना। तो वो बोलते हैं तुलसी आरती, है ना। तुलसी महारानी जो है वो भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी जो है भगवान की सेवा में बहुत कुछ भी हो कष्ट उठाने के लिए तैयार रहती है। भगवान की सेवा 60,000 वर्ष तक तपस्या किया वेंद्र देवी ने भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, सोचिए। और भगवान को अत्यंत प्रिय है। और तुलसी देवी जो है वो इस संसार में पौधे के रूप में प्रकट हुई है, तो इसलिए उनको हम क्या करते हैं? पुराणों में बताया गया कि अगर उनकी हम उनको आरती करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं और उनमें जल डालते हैं, तो हम बहुत तेजी से भगवान को प्रिय हो जाएंगे, है ना। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति से दोस्ती करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? बेस्ट तरीका क्या है कि उसका बेट अगर कोई बच्चा है जो उसको बहुत पसंद है, उसको आप चॉकलेट खिलाइए या उसको उसको पसंद प्रसन्न कीजिए, तो क्या होगा? वो व्यक्ति तुरंत प्रसन्न हो जाएगा, है? तो जो भी चीज उसको प्रिय है, जो भी व्यक्ति, उसको अगर आप खुश कर देंगे तो क्या करेगा, वो व्यक्ति भी खुश हो जाएगा। तो उसी तरह से तुलसी देवी जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है ना, तुलसी कृष्ण प्रेयसी तो प्रिय है कृष्ण को, इसलिए उनको अगर हम प्रसन्न करते हैं तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी कृपा दे देते हैं। इसलिए हम तुलसी महारानी को भक्ति मांगते हैं उनसे, है ना, कि आप कृपा करेंगे तो जल्दी से भक्ति में हम आगे बढ़ जाएंगे। और ठीक है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आता कि ये लोग ये माथे पे ये टीका वो भी ठीक है, थोड़ा सा कर ऐसे कर करना ही तो इतना कर दीजिए ना, ये पूरा लंबा एकदम यहाँ से यहाँ तक खींचने की क्या जरूरत है। और वो भी ठीक है, चलो माथे पे तो लोग, ये नाक पे क्यों कर देते हैं आप लोग, ये नाक वाला अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। तो ये है क्या वास्तव में, और दो लाइन क्यों, थोड़ा सा ऐसे मार दीजिए। तो इसका अर्थ है दो लाइन इसलिए होता है क्योंकि दो जो लाइन है ये भगवान के दो चरण हैं। क्या है, भगवान के दो चरण, दो लाइन है ना। और ये जो दो चरण है वो हम क्या करते हैं, भगवान के दोनों चरण को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। ये भक्ति का, भक्त का प्रेम है, जिससे भगवान के चरणों से बहुत प्रेम करता है और सम्मान के रूप में बोलता है। जैसे स्त्री क्या करती है, सिंदूर लगाती है, इस तरह से भक्त क्या करता है, पति के, पति के प्रति प्रेम और सम्मान का सूचक है सिंदूर। उसी तरह से भक्त क्या करता है, भगवान के चरणों को धारण करता है अपने मस्तक पे। और ये नाक पे क्या है, तो भगवान के चरण जहां भी रहेंगे वहां पे तुलसी महारानी जरूर रहेंगी, है ना। भगवान के चरण बिना तुलसी के नहीं रहते, तो इसलिए ये नाक पे आप देखते हैं ये तुलसी के साइज का है, ये तुलसी पत्ता है ना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, वाई वी डू, वाई वी पुट तिलक है। और ये तिलक जो है माथे पे, केवल माथे पे ही नहीं लगाते, माथे पे आपको दिखता है लेकिन एक्चुअली हम लोग 12 स्थान पे लगाते हैं, 12 स्थानों पे शरीर में लगाते हैं, है ना। ओम केशवाय नमो, ओम नारायणाय नमो, ओम मधुवाय नमो, ओम गोविंदाय नमो, ओम विष्णुवे नमो, ओम मधुसूदनाय नमो, ओम त्रिविक्रमाय नमो, ओम वामनाय नमो, ओम श्रीधराय नमो, ओम ऋषिकेशाय नमो, ओम पद्मनाभाय नमो, ओम दामोदराय नमो, ओम ऋषिकेशाय नमो। 12 स्थान पे तिलक लगाते हैं लेकिन बाकी सब स्थान ढका रहता है कपड़े से, इसलिए दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि एक भक्त जो है वो मानता है कि ये जो शरीर है इस शरीर में भगवान निवास करते हैं, परमात्मा। तो जहां भी भगवान निवास करते हैं वो क्या होता है, उसको बोलते हैं मंदिर। तो ये शरीर जो होता है वो भगवान का क्या है, मंदिर है। और इसको इसीलिए मंदिर के हर कोने में भगवान का विग्रह स्थापित करना चाहिए। तो इसलिए शरीर के चारों अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं, भगवान को आह्वान करते हैं कि आप निवास कीजिए मेरे शरीर के अंगों में। क्लियर, तो इसलिए तिलक लगाते हैं। ठीक है चलो तिलक समझ गया, लेकिन ये गले में ये पट्टा क्यों लगा रखा है, ये तीन तीन इनका तीन है, इनका तो दो ही है, इसका क्या मतलब है, पट्टा की क्या जरूरत है। तो पट्टा का मत ये नहीं है, ये क्या है, तुलसी है ना, इसको बोलते हैं नेक बीट, तुलसी की माला है। तो तुलसी जो है वो अगर गले में लगाएंगे तो बहुत जल्दी जो है हम शुद्ध हो जाएंगे। ये शास्त्रों में बताया गया है, यमराज बताते हैं अपने दूतों को कि जिसके गले में तुलसी की माला हो और जिसके माथे पे भगवान का तिलक हो, उसको जब भी देखो तुम दूर से ही प्रणाम करके तुम लोग भाग जाओ। अगर तुम लोग उनके बगल में गए तो भगवान की गदा से तुम्हारा स्वागत होगा। सपने में भी बताया गया शास्त्र में, सपने में भी जिसके गले में तुलसी की माला है और जिसके माथे पे भगवान वैष्णव तिलक है, उसको सपने में भी यमराज के दूतों के दर्शन नहीं होते। ये बताया गया है, ये पावर है ना, कोई भी हो। तो इसलिए इसमें बहुत पावर है तुलसी महारानी, इससे शुद्ध होता है यहाँ से गले में। इसलिए और जिनकी दीक्षा हो जाती है वो तीन राउंड पहनते हैं और जिनकी दीक्षा नहीं हुई वो दो राउंड मानते हैं। क्लियर हो गया भाई बियर? और उसके बाद वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर वो ये क्या है एंटीना? ये नेटवर्क कनेक्शन इसकी क्या जरूरत है? ये बहुत भद्दा लग रहा है, है? सबको करना पड़ेगा क्या? कई लोग तो आना बंद कर देते इसीलिए सोच के कि बाद में ये बड़ा सा रखना पड़ेगा, ये लंबा है कि नहीं? काफी टेंशन हो जाता है। तो ये जो एंटीना है इसको बोलते हैं शिखा। शिखा तो वैदिक संस्कृति में शिष्य जो है ब्रह्मचारी जो गुरु का आश्रम जाते थे, तो ये समर्पण का निशानी है। शिखा मतलब शिक्षा शब्द से आया है। शिक्षा अगर आपको प्राप्त करना है आध्यात्मिक शिक्षा, तो उसका एक ड्रेस कोड होता है ना? तो समर्पण जब शिष्य गुरु को करता है तो अपने बाल बाल सारे हटाने पड़ता है उसको, है ना? और शिखा प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी व्हाई डू यू हैव बाल्ड हेड? बाल्ड हेड मतलब गंजा सिर। किसी रिपोर्टर ने था, लेडी थी है ना, और उस वो स्कर्ट पहन के आई थी। स्कर्ट पहन के आई, क्या हुआ? टाइम हो गया क्या? व्हाई वी डू व्हाट वी डू, व्हाई वी क्लास के बीच में करताल की बजाते हैं, इसका मतलब समझे? व्हाई वी प्ले करताल ड्यूरिंग द क्लास? कौन बताएंगे? टाइम खत्म होने वाला है, टाइम ओवर हो रहा है, क्रॉस ओवर। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, प्रेस रिपोर्टर, लेडी प्रेस रिपोर्टर स्कर्ट पहनी थी और प्रभुपाद से पूछे कि स्वामी जी व्हाई डू यू हैव बाल्ड हेड? So, प्रभुपाद उसके पैरों पर देखते हुए बोले व्हाई डू यू हैव नेकेड लेग? तो शक पका गई। वेल कुछ बोल नहीं पाए, अब क्या बोले? तो उसको लगा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं ये। तो प्रभुपाद बोले इट्स बेटर टू हैव कूल हेड एंड वार्म लेग फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मतलब अच्छा रहेगा कूल हेड रहे, अगर आपको मंत्र जप करना है तो हेड क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। पैर गर्म हो तो चलेगा, लेकिन सिर गर्म नहीं होना चाहिए, सिर ठंडा होना चाहिए, है ना? और ठंडा सिर है, आप किसी दिन थोड़ा सा छोटा करा के देखिए, आपका सिर बड़ा ठंडा रहेगा, रिलैक्स फील होता है कि नहीं? आप चाहें तो कभी करा के देख सकते हैं, पूरा मत हटाइएगा नहीं तो फिर सब समझ जाएंगे कि ये हरे कृष्ण वाला है ना? तो छोटा भी स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। अगर आप थोड़ा भी अगर बाल काट दे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, है ना? और इतना शैम्पू साबुन भी नहीं लग वेस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? और सबसे ज्यादा फायदा है कि आपको भूतनी भी आपको नहीं पकड़ेगी। भूतनी जानते हैं ना? भूतनी बालों को देख के आकर्षित होती है। जिसके जिसके बाल बड़े मतलब भूतनी आकर्षित हो जाएगी उसके प्रति, आपके पीछे पड़ जाएगी, है ना? और मेरे बाल है ही नहीं तो भूतनी सोचे ये बेकार का आदमी, इसलिए बालों में बहुत आकर्षण है। आप इसको बाल पावर ऑफ बाल इस पे सेमिनार ले सकते हैं हम लोग मिस यूनिवर्स के बाल हटा दीजिए अब बताइए कितने लोग आकर्षित होंगे इसका मतलब बाल का कमाल बालों में ही सारा समस्या है तो न रहेगा बाल न होगा कमाल तो अगर आपको भूतनी से बचना है तो आपको थोड़ा सा छोटा बाल रखिए तो अच्छा रहेगा और साफ सफाई भी जल्दी हो जाएगी है कि नहीं नहीं तो रूसी गंदगी जमा हो जाता है इरिटेशन भी आता है पहले बोलते प्रभु जी मेरा माइंड बड़ा ना हमेशा डिस्टर्ब रहता है क्यों नहीं रहेगा इसलिए क्योंकि आपके बालों में इतनी गंदगी है हमेशा खुजलाते रहेंगे आप है ना तो इसलिए और ये जो है शिखा इसलिए रखते हैं क्योंकि शास्त्रों बताया गया है कि यहाँ पे चक्र है चक्र यहाँ पे हाँ सहस्त्रार चक्र ये चक्र जो है वो इससे कनेक्शन है किसका ये एंटीना यहीं से निकलता है एंटीना ये भगवान का आध्यात्मिक शक्तियाँ इसे कनेक्शन है इसका है ना आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना आसान हो जाता है ना अगर शिखा रखते हैं तो और एक और कारण है एक कारण क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुआं में डूब रहा है उसका बाल ये ऊपर दिखता रहेगा तो गुरुदेव क्या करेंगे उसको पकड़ के खींच लेंगे हमको बाहर निकाल लेंगे तो उसी तरह से जो है ये गुरुदेव को हम मौका देते गुरुदेव जब भी आप है ना आपको अगर लगे कुछ गड़बड़ है तो पकड़ लीजिएगा इसको खींच दीजिएगा है ना एक व्यक्ति था वो क्या करता था जब उसको बहुत नींद आती थी पढ़ते समय जब भी भागवत गीता पढ़ना शुरू करते तो उसको नींद आती थी है ना तो उसने क्या किया शिखा को ऐसे किया और ऊपर एक रस्सी लेके छत से बांध दिया जब नींद आती थी तो नींद आती थी तो ऐसे गिरता था वो टाइट हो जाता था तो नींद नहीं आती थी यार नींद आई भी तो अपना ऐसे हवा में झूल रहे हैंगिंग गार्डन तो शिखा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ना लेकिन कंपलसरी नहीं है सबके लिए है ना क्योंकि अगर मान लीजिए आप सब स्टूडेंट हैं तो तिलक शिखा और कंठी माला ये कंपलसरी नहीं है सबके लिए है ना कोई तो आप जैसे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे आप तिलक लगा के जाओगे तो सब आपको देखेंगे जैसे किसी और ग्रह का प्राणी आ गया है कि नहीं तो आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय है पूरे कॉलेज में आज की ताजा खबर दो दिनों के अंदर इतना परिवर्तन 16 छात्र विद्यार्थी लग रहे हैं जैसे किसी और ग्रह से आए हैं तो इसलिए चर्चा का विषय बनने से बड़ा दिक्कत हो जाएगा इसलिए स्टूडेंट्स जब कॉलेज जाते हैं तो उनको हम बताते हैं आप पानी का तिलक पहन सकते हैं है ना किसी का पानी का तिलक कैसे होता है दिखाई नहीं देगा कैसे करेगी पानी में हाथ डालिए ओम के सवाय नमः तिलक हो गया भगवान ने स्वीकार कर लिया संसार को नहीं दिखेगा ठीक है लेकिन जब इसका मतलब ये नहीं कि जब मंदिर भी है प्रभु जी मैंने पानी का तिलक पहना है वो पूछे प्रभु आप तिलक क्यों लगाए तो ये पानी का तिलक है ना, भगवान देख रहे हैं। नहीं, जब मंदिर आए या कैंप में आए या बेस में आए, तो जब तक बेस में रहे तब तक आप पहन सकते, तिलक लगा सकते, जाने से पहले पानी का है? या क्लास में आ रहे हैं है ना, तो पानी का तिलक प्रैक्टिकल थोड़ा रहना पड़ेगा है ना, सीखा नहीं रखना है, है? जब तक आप कॉलेज में हैं है ना, या ऑफिस में जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है तो कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो जरूरत नहीं है, है ना। ये सब कंपलसरी नहीं है, बाल कटाना भी कंपलसरी नहीं है, ये सब मैंडेटरी नहीं है ऐसा, ये सिचुएशन के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सबको करना है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये कपड़ा आपका लाल कपड़ा क्यों है, कोई डेंजर का निशानी है ये? लाल कपड़ा मतलब खतरा, जब ट्रेन आती है तो क्या करते हैं, लाल झंडी दिखाते हैं। तो आप लाल कपड़ा क्यों पहने, क्या हमें भी पहनना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, धोती कुर्ता तो वैदिक कल्चर है, ड्रेस है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सबको धोती कुर्ता ही पहनना है। हाँ, अगर आप मंदिर आओ या बेस में आओ तो पहन सकते हो, है ना, और बेस में आइए, बेस के अंदर आके पहन लीजिए, फिर बेस से बाहर जाने से पहले खोल दीजिए, है कि नहीं, इतना कर सकते, जब तक भगवान के सामने है मंदिर में है तो पहन लीजिए, बाहर पैंट शर्ट आप पहन के रह सकते हैं। और आप बोलेंगे प्रभु जी आपने तो लाल पहना है, इन्होंने उजला क्यों, इनको भी लाल पहना है, सब एक कलर के होने चाहिए ना, तो इनका उजला है ना, तो इनका उजला क्यों है, आपका लाल क्यों है, तो इसका जो भक्त जो है पूरी तरह से समर्पित कर चुके होते हैं अपना जीवन भगवान की सेवा में, तो उनके लिए लाल लाल जैसे भारत का जो झंडा है ना, तो उसमें कौन कितने कलर हैं, कौन कौन से, केसरिया सफेद बीच में और नीचे हरा, सबसे ऊपर क्या है, क्यों, त्याग है, लहराता रहता है त्याग, लेकिन कोई करता नहीं है कि नहीं, त्याग के बल पे ही देश आजाद हुआ है कि नहीं, गर्लफ्रेंड बना के देश आजाद तो नहीं हुआ, चंद्रशेखर आजाद कभी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं गए थे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने, या मॉल्स में नहीं, त्याग आवश्यक है ना, तो कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो त्याग करे पूरे संसार के कल्याण के लिए, सबको सब लोग त्याग कर लेंगे तो फिर त्याग कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन कुछ लोगों को त्याग करना आवश्यक है, तो जो त्याग का प्रतीक होता है ना, जैसे ही व्यक्ति, जैसे हर व्यक्ति का एक ड्रेस होता है ना, पुलिस का ड्रेस होता है कि नहीं, जैसे ही देखते समझ जाते हैं ये पुलिस है कि नहीं, कैसे, क्योंकि उसका ड्रेस पहना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, ये देखो मुझे मार रहा है आप हेल्प कीजिए, आप पुलिस हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर पुलिस मान लीजिए पैंट शर्ट पहन के घूमे तो आपको पता चलेगा बगल में पुलिस रहेगी, आप चिल्लाओगे नहीं, है ना। तो उसी तरह से स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं, जो त्याग करते हैं अपने सांसारिक जो संबंधों को, सांसारिक जीवन को, क्यों, एक कई बार लोग पूछते हैं आपने परिवार का त्याग किया, ये ठीक बात है क्या? तो परिवार का त्याग हमने किया ही नहीं है, हमने बस परिवार को थोड़ा बढ़ा दिया, पहले परिवार चार पांच लोगों था, आज हमारा परिवार पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, ठीक है नहीं। तो मेरे लिए मेरे भाई जो है वो भी आप ही की तरह आपके समान है, आप भी मेरे भाई हैं, है ना, मेरा अपना भाई भी उतना प्रिय है जितना कि आप मुझे प्रिय है कि नहीं। तो हमने क्या किया, परिवार के दायरे को क्या किया, बाउंड्री इतनी हुई थी, अभी क्या किया उसको थोड़ा बढ़ा दिया, अब पूरे विश्व तक बढ़ा दिया है, तो इसमें कोई गलत ही है, तो अच्छा है ना, सबके लिए समान समान व्यवहार, समान दृष्टि से सबको देखना है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब बराबर है। तो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो उस लेवल पर जाते हैं, उनको ये त्याग ये ड्रेस दिया जाता है, लाल है ना, केसरिया जिसको बोलते हैं, सेफ्रोनाइजेशन है ना, सेफ्रोनाइज करते हैं, है ना, लेकिन सबको नहीं पहनना है ना, इसलिए डरिए मत। कुछ एक दो लोग होते हैं गिने चुने, वही पहनते हैं, है ना, ये आसान नहीं है इसको, इसलिए हम लोग भी जल्दी किसी को नहीं पहनाते, है ना, क्योंकि कई लोग इसके पहन के गलत काम भी करते हैं, तो इसलिए बड़े सोच समझ के बहुत उच्च लेवल की ट्रेनिंग के बाद ये दिया जाता है, है ना, तो इसलिए आप लोग परेशान होते हैं क्योंकि आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये कुछ स्पेशल सोल्स होते हैं उन्हीं के लिए होता है, ठीक है, और दे आर गॉड मेड बाय नेचर, दे आर मेंट फॉर दिस, है ना, उनका वो जन्म ही होता है इसके लिए उनका। आप उनकी शादी कर दोगे तो परेशान हो जाएंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे, पत्नी भी परेशान हो जाएगी, इसलिए बढ़िया है कि किसी को परेशान मत करो। इसलिए ऐसे लोग को हम, है ना, जेल में बंद कर देते हैं, समाज से बाहर। तो उसी तरह से, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं है ना, पिछले जन्मों के संस्कार जिसके होते हैं वो बचपन से उसके अंदर विरक्ति होती है, संसार में होती है, तो उस प्रकार के जीवात्माएं जो हैं वो अगर उनको संसार में लगा भी देंगे तो कोई खुश नहीं हो पाएगा उनसे, सब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उसके व्यवहार से, है ना, तो इसलिए सबको चिंता देने से बढ़िया है कि, है ना, मुक्त कर दीजिए चिंता से। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और जिसको संसार में रहना, वो अगर वैरागी बन जाए तो क्या होगा, वो वहाँ पे परेशान कर देगा। इसलिए सबका एक नेचर होता है, गुरु जो है उसके नेचर को परखता है, देखता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि कौन उसके योग्य है। सब नहीं कर सकते, है ना, ये यूनिक लोग होते हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेशु कश्चिन यतति, इसलिए हजारों में कोई एक व्यक्ति होता है जो इसको धारण करता है, ठीक है। तो ये इसलिए लाल कपड़ा, और बाकी लोग क्या कर सकते हैं, उजला कपड़ा पहन सकते हैं, श्वेत वस्त्र, सेकंड कलर, सबसे ऊपर का लाल, नीचे का वाइट। मैं भगवत गीता से बात नहीं करूँ, मैं देश के झंडे की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सबसे ऊपर वाला नहीं कर सकते तो नेक्स्ट लेवल क्या है, वाइट, है ना, मतलब पीस का संदेश दीजिए, त्याग नहीं कर सकते तो पीस, शांति, और शांति भी नहीं कर सकते तो हरा हरा भरा रहिए। हरा भरा मतलब आप ऑफिस जाते समय थोड़ा पहन सकते हैं, है ना, सुलाई दर्द। हरा का क्या अर्थ होता है झंडे में, उन्नति, उन्नति कीजिए, पैशन, पैशन में रहिए, ये करना है, वो भी करना है, इधर कर दूंगा, उधर करके दिखा दूंगा, वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे नीचे है, ठीक है, लेकिन शांति ज्यादा जरूरी है कि नहीं। उन्नति खूब कर रहा है लेकिन शांति नहीं है, क्या फायदा, सारे संसार को सुखी बना दूंगा, खुद ही दुखी हो, खुद ही परेशान है, और चले पूरे देश को सुखी, खुशी, सुख प्रदान कर, सुखी बनाने, खुद ही दुखी है, तो चिराग तले अंधेरा। तो पहले खुद शांति प्राप्त करे, फिर देश में शांति होगी, होगी शांति चारों ओर एक दिन, है कि नहीं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पता नहीं होगी शांति चारों ओर एक दिन, कब, एक दिन, 50 साल पहले ये गाना था, आज भी अप्लीकेबल है, यूनिवर्सल सॉन्ग, ऑलवेज अप्लीकेबल, एवरीवेयर, एट एवरी प्लेस, एट एनी टाइम, है, बड़ा बढ़िया गीत है, ऐसा ही होना चाहिए गीत, एक दिन, कब आएगा, वो दिन कब आएगा, एक दिन, पूरा विश्वास है, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, लेकिन हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ, कब, एक दिन। क्या गाना है जबरदस्त। 60 साल हो गया आजादी के, वो दिन नहीं आया अभी तक। तो इस तरह से कपड़े का काम खत्म। तो सारे प्रश्नों के ऑलमोस्ट उत्तर दे ही दिए मैंने, जो जो आपके प्रश्न उठ सकते हैं, ये क्यों करते हैं आप, ये क्यों करते हैं, है ना। तो कई लोग पर ठीक है, पर इतना पैसा क्यों खर्चा करते हैं आप मंदिर बड़े बड़े बनाने में, छोटा मंदिर से काम नहीं चलेगा क्या है? तो बड़ा मंदिर इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोग आकर्षित होकर वहाँ पे आए, है ना। जब आएंगे अब छोटा मंदिर बना देंगे तो कोई आएगा ही नहीं, और बड़े मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और आएंगे तो फिर उनको पकड़ लेंगे, फिर उनको भक्ति सिखाएंगे, भगवत गीता भी देंगे, सेमिनार भी बताएंगे, और बताएंगे व्हाई वी डू व्हाट वी डू, है कि नहीं। लेकिन आएंगे तब ना, आएंगे नहीं तो कैसे करेंगे। इसलिए बड़ा मंदिर बनाते हैं ना, दिखाते हैं, देखो बहुत बढ़िया है, देखो पत्थर कितना बढ़िया है ना, इसमें ये भी है वो भी है। लेकिन मेन जो ज्ञान जो हम देना चाहते हो कि आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, दिस इज मेन थिंग। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा, है ना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, क्वेश्चन आंसर भी होगा आप लोगों का, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, अगर टाइम मिला तो। क्या टाइम हो गया?
2:30
ढाई बजा है अभी, तो 2:30 बजे सुन लो 2.5 घंटे और है ना। तो अभी यहाँ से हमें 1/2 घंटे लगेगा श्री जी के मंदिर जाने तक। अभी तो मंदिर बंद हो गया होगा, है ना, तो दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। वैसे यहाँ पे दर्शन हो गए श्री जी के, है ना। तो वहाँ से मंदिर के ऊपर जो वो लगा झंडा लगा है ना, उसको देख लेंगे तो दर्शन के बराबर माना जाता है, और उसको देख के प्रणाम कर लेंगे, श्री जी स्वीकार कर लेंगे ना, श्री जी मतलब राधा रानी, है ना, स्वीकार कर लेंगे। फिर वहाँ से हम लोग उतर जाएंगे पहाड़ के नीचे, वहाँ हमारी गाड़ी रखी हुई है, खड़ी है मतलब, और गाड़ी में बैठ जाएंगे, सीधे जाएंगे कहाँ, नंदगांव, नंदगांव, क्योंकि राधा रानी के गांव आप घूम लिए तो कृष्णा नाराज हो जाएंगे कि उनके गाँव नहीं गए आप, है नहीं, इतने बगल में आके मेरे गाँव नहीं आए ये लोग, है? तो इसलिए कृष्णा को खुश करने के लिए नंदगांव जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ पे हम लोग क्लास करेंगे, कीर्तन करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर और ड्रामा भी होगा आप लोगों का, है ना। तो अभी आप लोगों का ड्रामा 1/2 घंटे का टाइम है, यहाँ से वहाँ जाने में 1/2 घंटे लगेगा, 1/2 घंटे के अंदर आपको ड्रामा तैयार करके रखना है, ठीक है। कौन सा ड्रामा? लिक्विड ब्यूटी, बहुत अच्छा ड्रामा है, और उसके ऊपर डिस्कशन तो और भी अच्छा है, बड़ा मजा आएगा, है ना, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की
जय।
चलिए जल्दी से सामान जल्द गाड़ी में ही रख लीजिए, कर्तन नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि टाइम कम है। गाड़ी है यहाँ पे? गाड़ी चली गई तो लेके चलते हैं फिर।
कर तो भाई ना।